इतनी प्रकार हमें तो बाद में मिलेगा। नाश्ता हो रहा है, भूखे भी हम दूर से आए, न खाए न पिए, पीना है। Thank you. आखिरी बार में भी चार कुमारों ने भागवत कथा की गंगा के तट पर। कलयुग अभी अभी प्रारंभ हो चुका था, हो सकता कुछ 200-250 वर्ष बीत चुके होंगे तब चार कुमार यहाँ भागवत कथा किए। वैसे सर्वप्रथम भागवत कथा तो शुक्ताल में हुई, नाम सुना शुक्ताल, जो यहाँ से दूर नहीं है, हस्तिनापुर भी दूर नहीं है, हस्तिनापुर के बाहर, नगरी के बाहर गंगा के तट पर वो भागवत कथा भी हुई। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा प्रारंभ करने जा ही रहे थे, उन्होंने अभी अभी कहा ही था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में देवता बना है, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। उनके पास कुंभ था, कुंभ मेले का कुंभ, या और भी कोई कुंभ हो सकता है, लेकिन उस कुंभ में जरूर वही अमृत था जो समुद्र मंथन से निकला था। वो अमृत ऐसा अमृत एक कलश में लेके देवतागण उस भागवत कथा में पहुंचे, या सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे। और केवल दो ही बार नहीं थे सुखदेव गोस्वामी या राजा परीक्षित, कई राजर्षि महर्षि देवर्षि वहां पधार चुके थे। तो देवता जो वहां समागमन, देवास्तत्र समागमन, शुकम नत्वा वदन सर्वे, हरि हरि क्या हो, हरि हरि, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, फिर सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार तो किया। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। और उन्होंने प्रस्ताव रखा, अब राजा परीक्षित के साथ ही दिन शेष है, हमारे पास उपाय है, ये हमारे पास अमृत है जिसका पान आप राजा परीक्षित को कीजिए, और इस अमृत के बदले में जो हमारे कुंभ में हम अमृत लाए हैं उसके बदले में हमें कथामृत आप पिलाइए, भागवत कथामृत पिलाइए। एवं विनिमय जाते सुधाराभ्या प्रपीयताम् प्रपाप्यामो वयम् सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हमने जो लाया है अमृत राजा परीक्षित पियेंगे, और श्रीमद्भागवत अमृत हम देवतागण पियेंगे। एवं विनिमय, ये विनिमय, ये व्यापार, एक्सचेंज का प्रस्ताव जब सुखदेव गोस्वामी सुने, कुछ सुखदेव गोस्वामी उत्तर में कहे, वसुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मनिर्महान। कहा ये भागवत कथा और कहा ये तुम्हारा, या भागवत कथा अमृत और कहा तुम्हारा ये दूसरा अमृत। तुम जो लाए हो ये अमृत, ये तो कांच का टुकड़ा है, कांच है, और हमारे पास जो भागवत अमृत है ये है मणि, महान महान मणि है, ये रत्न है, ये जड़ जवाहर है, ये मोती है, राम नाम के या कृष्ण कथा के मोती, बिखराऊ मैं गली गली, ये मोती है। और तुम तो कांच लेके आए हो, अभक्तांस्तांस विज्ञाय न गदो सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभः। तो सुरों को, देवताओं को कुंभ मेले का अमृत तो प्राप्त हुआ था, किंतु सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत का अमृत तो अति दुर्लभ है, सुदुर्लभ। और आप कुंभ मेले में प्राप्त अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत के साथ कर रहे हो, आप अभक्त हो, आप अपराधी हो, हटो यहां से, गेट आउट। तो द्वार दिखाया, आउट आउट। इस भागवत कथा अमृत के अधिकारी तुम नहीं हो, क्योंकि इन दोनों अमृतों की तुलना ये तुल्य एक समकक्ष समझ रहे हो। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नामामृत, ये नाम उच्चारण की विधि, ये भक्ति की तुलना कोई पुण्य कर्म के साथ करे। वेदों में, कर्म कांडों में कई प्रकार के पुण्य कर्म बताए हैं, ऐसे पुण्य कर्मों की तुलना या पुण्य कर्म का कृत्य हरिनाम उच्चारण के कृत्य के बराबर का नहीं हो सकता। अगर कोई समझता दोनों एक बराबर है तो उसने क्या किया, अपराध किया। आज प्रातःकाल भी हम 10 नाम अपराधों का स्मरण कर रहे थे, उसमें से 8वां नाम अपराध हुआ। जब राजा भगीरथ प्रयास कर रहे थे गंगा को पृथ्वी पर लाने का, तो कई विघ्न कई बाधाएं, गंगा को स्वर्ग से यहां पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ राजा ने जितने प्रयास किए, ऐसे प्रयास सृष्टि में अब तक किसी ने नहीं किए, न भूतो न भविष्यति जैसा प्रयास उन्होंने किया। विघ्न के बाद विघ्न, मैं आ तो सकती हूं किंतु मैं स्वर्ग से जब मेरा ओ
अंगो बहना प्रारंभ करूंगी, इतने तेजी से आऊंगी तो उसको कोई रोकने वाला भी तो चाहिए, उसको ब्रेक लगाने वाला भी तो चाहिए। नहीं तो हो सकता है पृथ्वी अपने स्थान से हट जाए। तो ये एक समस्या आ तो सकती हूं, लेकिन कौन रोकेगा मुझे मेरे गति को। और दूसरी बात है, गंगा ने कहा मैं जब आऊंगी तो कई लोग आएंगे, हरिद्वार आएंगे, कुंभ मेले में आएंगे, मुझ में डुबकी लगाएंगे, अपना पाप मुझ में बहा देंगे। और इतना पाप वो दिल्ली वाले और कहां कहां के आएंगे। दीना ही ना यत्ता झीलो तो आपली तापली यहां कहां से आएंगे। इतना हमारा आपका बोझ तो मैं धो नहीं सकती। ये दो समस्या है गंगा मैया ने जब भगीरथ राजा को कही तो उन्होंने और चिंतन किया, विचार किया, क्या किया जा सकता है, क्या उपाय है। हाँ तुम सही कह रही हो, तो भगीरथ राजा ने शिव जी से मिले और उनको निवेदन किया, क्या आप धारण कर सकते हो, आप क्या गंगा को रोक सकते हो। तो शिव जी तैयार हुए और गंगा जो स्वर्ग से यहां आई, उन्होंने भी सोचा बड़ा सुअवसर है, गंगा तो मेरे प्रभु के चरणों का चरणामृत है, अभिषेक का जल है, तो मैं उस जल को भगवान के अंग को सर्वांग को चरण को धोया हुआ जल मैं अपने सिर पर ही धारण करना चाहूंगा। तो शिव जी तैयार हुए, गंगा को उन्होंने धारण भी किया अपने जटाओं में, उसकी गति को रोका और फिर धीमी गति से बहने वाली गंगा की धाराएं सर्वत्र बिखर गई। इसीलिए अलग अलग प्रयाग है, देव प्रयाग और ये प्रयाग और प्रयागराज किया और मंदिर प्रयाग यह और हरिद्वार बद्रिकाश्रम तक पांच प्रयाग है। प्रयाग मतलब यहाँ यज्ञ की स्थली है अभी, और यज्ञ कहाँ जहाँ संगम है, अलग अलग नदियों का संगम जहाँ होता है कॉन्फ्लुएंस, और यज्ञ भी हुआ करते थे प्रयाग। हाँ ठीक है, तो इसीलिए शिव जी बन गए, उनका एक नाम हुआ गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले गंगाधर। गंगाधर शिव जी के बड़े दयालु है, वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु है। शिव जी तैयार नहीं होते तो फिर गंगा को पृथ्वी पर नहीं आना था, उनकी कृपा से हमको गंगा प्राप्त हुई है। और फिर दूसरी समस्या थी कि हाँ हाँ जब मैं यहाँ पहुंचूंगी तो कई सारे स्नान करने के लिए आएंगे, अपना पाप बहाएंगे मुझमें। तो भगीरथ महाराज कहे नहीं नहीं केवल पापी ही नहीं आएंगे, महात्मा भी तो आएंगे। तो न्यूट्रलाइज होगा, तुम्हें मुक्त करेंगे। मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वे महात्मा गंगा के तट पर हम आते हैं, किसी धाम में आते हैं, हरिद्वार यहाँ आते हैं, तो केवल स्नान नहीं करना होता है। सलिले न कर ऋचित, महात्मा भी आएंगे और उनके मुख से ज्ञान की गंगा बहेगी, उनके मुख से सरस्वती निकलेगी, उसका पान जब करेंगे उसका निष्कर्ष सिद्धांत होगा। मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वैष्णव है, परंपरा के आचार्य है, भगवत गीता को यथारूप समझाएंगे, वेदांतकृत वेदविद च अहम्। वेदांत मुझे जानने के लिए वेदांत है, वेद का अंत जहां होता है, भक्ति प्रारंभ होती है, वहां भगवान प्राप्त होते हैं। अहम एव वेद्य, मुझे जानने के लिए वेद है। गंगा के तट पर पहुंचे हुए महात्मा कृष्ण की कथा, कृष्ण के सिद्धांत, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उनसे जब कथा सुनेंगे, सिद्धांत सुनेंगे, व्यक्ति वैसे ही पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान ने कहा था, कुरुक्षेत्र में भगवान स्वयं स्नान के उद्देश्य से द्वारिका से कुरुक्षेत्र पहुंचे। महाभारत के युद्ध के समय की बात है, इसके पहले एक सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण बलराम सुभद्रा की जगन्नाथ मंदिर भी है, वे जब पहुंचे और द्वारकावासी असंख्य द्वारकावासी पहुंचे, वसुदेव देवकी भी पहुंचे थे, भगवान की 16108 रानियां भी पहुंची थी कुरुक्षेत्र में स्नान के लिए आए थे। उस समय उन कुंडों के तट पर ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, कई सारे कुंड है कुरुक्षेत्र में, उन कुंडों के तट पर भगवान श्री कृष्ण संतों को, महात्माओं को मिले और उनको जब वे संबोधित कर रहे थे भगवान, तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग होते हैं तीर्थ यात्रा में आते हैं, स्नान करते डुबकी लगाई बैक टू दिल्ली, कहा है बस स्टेशन, कहा है रेलवे स्टेशन, और ये लोगों ने केवल स्नान ही किया किंतु वहां के जो अभिज्ञ, वहां के जो विद्वान भक्त है, संत महात्मा है, उन तक नहीं पहुंचे, उनका संग नहीं किया अभिज्ञ स्वराहा। ठीक है, तो ऐसे ज्ञानी अभिज्ञ भक्तों को नहीं मिले तो केवल स्नान ही किया। तो भगवान के शब्दों में भगवान ने कहा, वे लोग गोखरा, ख सारा मतलब गधा, कोई गधे है वो बैल है, उनके पास स्नान नहीं किया, बुद्धि पूर्ण पेत्री धातु के तिथि बुद्धि तीन धातु का बना हुआ, कफ पित्त वायु का बना हुए शरीर ही मैं हूं ऐसे भी समझने वाले, देहात्म बुद्धि देह ही आत्मा है ऐसे समझने वाले, पापी तापी आएंगे स्नान करेंगे और लौटेंगे, उसे पूरा लाभ नहीं होना है। वहां के पहुंचे हुए महात्माओं से कथा श्रवण उपदेश श्रवण उपदेश अमृत का पान करना होगा। भगवान श्री भगवान वाच, एक तो कुरुक्षेत्र में जब गीता सुनाई तब श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच ये श्रद्धा है, उसके पहले जब वहां आए थे उस वक्त भी वे भगवान कहे श्री भगवान वाच, ये वचन को भागवतम है जिसमें भगवान साधु संघ का महात्म्य समझा रहे हैं। स्नान का महात्म्य हम समझे हैं लेकिन साधु संघ का महात्म्य नहीं समझे, कथामृत उपदेशामृत हरिनामामृत का महात्म्य हम नहीं समझे, महात्माओं से मिलेंगे उसका महात्म्य हम समझेंगे, हमारी यात्रा सफल होगी। कभी गंगा पृथ्वी पर आई, शिव जी ने धारण किया अपने जटाओ में, गंगाधर बने हुए गंगा उतर के यहाँ आई, हरिद्वार तक आई, महात्मा भी आए वहां और लोग आए यात्रा के लिए, आए मेले के लिए आए, कथा श्रवण किया, संतों का संग किया, उनके मुख से निकलने वाली गंगा ज्ञान गंगा भक्ति की गंगा गंगोह में स्नान किया और साथ साथ गंगा में भी स्नान किया और अपनी यात्रा को उन्होंने सफल बनाया। तो पहले तो गंगा प्रकट हुई और फिर उस गंगा में ये अमृत की बूंदे गिरी, कुंभ मेले का अमृत, कुंभ का अमृत, कुंभ जब इंद्र के पुत्र का नाम जयंत के हाथ में जब कुंभ था और भी देवता उनके सूर्य देवता और देवता बॉडी गार्ड की तरह आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन देवता भी तो उत्कंठित थे उस अमृत को प्राप्त करने के लिए, तो कैसे बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, संघर्ष हुआ है देवता और सुर और असुरों में, देवता और दैत्यों में उस अमृत के लिए, तो जयंत दौड़ रहे हैं पीछे, दैत्य दौड़ रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हमको पहले हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, नहीं नहीं हम पहले पिएंगे, ऐसा सब चिल्ला रहे पुकार रहे दौड़ रहे हैं। तो उस समय ये अमृत चार स्थानों पर गिरा, हरिद्वार धाम की कोई स्थान, हरिद्वार रुद्रप्रयाग धाम, नासिक धाम और उज्जैन अवंतीपुर धाम, चार स्थानों में वो अमृत कलश में से अमृत गिरा। तो और वही अमृत पुनः पुनः ये अमृत प्राप्ति के लिए भी तो प्रयास हुआ, पहले तो भगीरथ राजा ने प्रयास किया गंगा को या पृथ्वी पर लाने का, और फिर अमृत प्राप्ति के लिए बड़ा मंथन हुआ, देव और दैत्यों ने अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव श्वेत द्वीप में मंथन हो रहा है, दूध सागर में वासुकी सर्प का रस्सी बनाई है, एक और देवता है, दूसरी ओर दानव है, मंथन हो रहा है, मंथन हो रहा है। प्रतीक्षा तो थी अमृत की या कुछ रत्नों की, अमृत की, लेकिन सर्वप्रथम जो प्राप्त हुआ जहर ही निकला, अलाहल नामक जहर, और सर्वत्र फैल गया, सारे ब्रह्मांड भर गए, जिसके कारण यहाँ के जीवों को जीना भी मुश्किल हुआ, सांस तक नहीं ले पा रहे थे, वे जीव जाने जा रही थी, तो सभी देवता पुनः शिव जी के चरणों में पहुंचे और पाही माम पाही माम, तो उदयालु शिव जी ने तो सारे जहर का पान किया, और उस पिए हुए जहर को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण किया, कंठ जहर धारण किया हो, कंठ का रंग काला नीला हुआ, इसीलिए शिव जी को ना कहलाए क्या नीलकंठ, पुनः शिव जी अगर ऐसी दया नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करते, शिव जी की हम नकल नहीं कर सकते, हम जहर नहीं पी सकते, उन्हें तो सारा बड़ी मात्रा में जहर पी लिया, एक सैंपल के रूप में एक बूंद वगैरह पी सकते हैं हम, तो क्या होगा, हमारी जो सीट है रेल में बुकिंग हुआ तो एम्प्टी जाएगी और रिजर्वेशन जेब में रह जाएगा, हम भी यही रह जाएंगे, कुछ पीते रहते हैं और सीट के फॉलोअर्स आप जहां कहां जाओगे, तो नकल नहीं हो सकती। तो पहले जहर निकला, शिव जी पान किए, और भी कई सारे रत्न निकलते हैं, ऐरावत, ऐरावत का नाम सुने हो, वो भी रत्न निकला, वो इंद्र को दिया, उच्चैश्रव नाम का घोड़ा निकला तो किसको दिया, बलि महाराज को दिया, पारिजात भी निकला देवताओं को, अप्सरा नृत्य करने वाली स्वर्ग में पहुंचाई गई, कौस्तुभ मणि निकला, कौस्तुभ विष्णु प्राप्त किए उसको, लक्ष्मी उत्पन्न हुई है विष्णु को प्राप्त हुई है, इस प्रकार उसका बंटवारा हो रहा है, कुछ देवताओं को कुछ दानवों को कुछ रत्न प्राप्त हो रहे हैं, तो कुछ विष्णु को भी प्राप्त हुए हैं, अच्छा हुआ वो कंठी कौस्तुभ मणि भगवान पहनना प्रारंभ किए, तो वैकुंठ में पहुंचने वाले मुक्त आत्माओं को बड़ी समस्या खड़ी होती उनके समक्ष, वहां तो सभी चतुर्भुज है, सभी मुकुट धारण किए हैं, सभी तेजस्वी है, सभी माल्यार्पण है, कई को स्वरूप सिद्धि प्राप्त है, भगवान जैसा ही स्वरूप है। इसमें से जीव कौन और भगवान कौन, कौन से विष्णु है, किनको नमस्कार करे, मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु नमस्कुरु, कठिनाई महसूस होती हमको। लेकिन जब ये कंठी कौस्तुभ मणि को भगवान धारण किए तो फिर आसान हो गया, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, कंठी कौस्तुभ मणि नहीं है, ये भी नहीं है भगवान, ये भी नहीं है, ये होने चाहिए, क्योंकि इनके गले में क्या है, कौस्तुभ है। और फिर अंत में अजीत भगवान, भगवान के अवतार, इस कुंभ का जो समुद्र मंथन और अमृत प्राप्त हुआ है, इस लीला, इस प्रसंग, इस घटना, इतिहास के साथ भगवान के कई सारे अवतारों का संबंध है, ये कई सारे अवतार प्रकट हुए। संभवामी युगे युगे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्पिताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मंथन हो रहा था तो अजित भगवान, भगवान के एक रूप, वहीं पर ये सारी समस्याएं, जब मंदराचल धोके ले जा रहे थे, इतना बोझ था उस मंदराचल का, उस बोझ से कईयों की जाने जा रही थी, भगवान आए और उन्होंने उठा के उस मंदराचल को गरुड़ की पीठ पर रखा है और स्वयं उस मंदराचल के शिखर पर बैठे और सभी देवताओं को बिठाया, दानों को बिठाया और दूध सागर के तट पर पहुंचे। ऐसा दृश्य होगा ना, गरुड़ जा रहे थे पीठ पर, मंदराचल, सारे देवता दानव बैठे हैं, भगवान सबसे शिखर पर बैठे हैं और जा रही फ्लाइट। वीर्य भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन, मैं बलवान हूं, तैतीस करोड़ देवता, 33 कोटि देवता और उनसे अधिक दानव सारे मिलके ढो नहीं पाए उस मंदराचल को, भगवान ने ऐसे आसानी से उठा के बाएं हाथ का खेल उन्होंने गरुड़ के पीठ पर रखा। आपने क्या सोचा, गोवर्धन पहाड़ को भगवान ने उठाया, कितना बड़ा, उसे कितने कई अधिक गुना विशाल, ऊंचा, भारी, ये मंदराचल पर पहले ही उठाए थे भगवान, आधा वर्ष पूर्व तो गोवर्धन पहाड़ को उठाए। ये अजित भगवान और कई प्रकार की सहायता दे करते रहे इस मंथन में। तो जब मंथन हो रहा था, वासुकी सर पूछ, हम पूछ की ओर हम थोड़े ही रहेंगे, कई सारी लीलाएं हैं, घटनाक्रम है, पहले देवतागण थे पूछ की ओर, असुर थे पूछ की ओर, मुख की ओर, पशु के सर के मुख की ओर थे देवतागण, स्वयं भगवान उनको वहां ले गए, चलो चलो हम देवतागण आइए, हम मुख की ओर, मुख को पकड़ते हैं और मंथन में मंथन करेंगे। वे पूछ के और रहेंगे। असुर ने सोचा पूछ अच्छा होता है कि मुंह अच्छा होता है, और देखो हम लोग हमको उन्होंने ऐसे समझा कि हम तो कुछ भी नहीं है हमको, इसलिए हमको पूछ की ओर उन्होंने उनको खड़ा किया, नहीं 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 हम मुंह की ओर जाएंगे, हम मुंह को पकड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। अजीत भगवान कहे चलो देवता आप पूछ की ओर जाओ और दानों को मुंह की ओर। जब मंथन शुरू हुआ तो सर्प के मुख से जो विष और धुआं क्या जो जो निकलने लगा उसका कृपा प्रसाद पहले किसको प्राप्त हुआ? दानों को प्राप्त हुआ। अमृत के पहले वो असुगी के मुख से तो देवता उनके साथ अजीत भगवान सदैव रहे मंथन के समय। तो ये अलग अलग रत्न निकले और एक जब समय आया कुंभ का समय, कुंभ देखा और उस कुंभ को धारण किए थे भगवान, वो एक रहेगा कच्छप भगवान भी प्रकट हुए हैं। मंथन कर रहे थे तो इतना भारी वो मंदराचल पर्वत उस दूध सागर में डूब रहा था, तो मंथन कैसे संभव होता था, सारा का सारा सागर डूब सकता था। तो भगवान ने और एक अवतार लिया, केशवद्रीता कच्छप रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान बन गए कछुआ बन गए कच्छप, आपने तो मोटे मोटे कच्छप कछुए तो देखे होंगे, लेकिन ये कच्छप तारा मंदराचल कितना भारी कितना ऊंचा कितना लंबा चौड़ा उसका परिधि, वो सारे ऐसे विशाल मंदराचल को धारण करने के लिए जितने विशाल आकार के रूप की आवश्यकता है उतना बड़ा विशाल रूप बनाए कच्छप भगवान। और उस मंदराचल को डूबने से उन्हें रोका, नहीं तो मंथन संभव नहीं था। अरे मंथन कर रहे थे तो भगवान की सेवा हो रही, भगवान को अच्छा लग रहा था, खुजला हार्ट हो रही थी, कच्छप को अच्छा लगता था। जो गाय को अगर आप करते ना गाय और भी प्रसन्न होती है, तो कच्छप के पीठ पर जब वो मंथन हो रहा है घिस रहा है भगवान बड़े प्रसन्न थे। इस मंथन के अंत में कुंभ, जो कुंभ भगवान धन्वंतरी भगवान के हाथ में, धन्वंतरी भगवान के, ये भी भगवान का अवतार धन्वंतरी कुंभ को लेके प्रकट हुए। इन दानों ने बड़े चालाकी से उसको छीन लिया और पी भी सकते थे, और दानों अगर पिएंगे तो फिर वे बनेंगे अमर और इस संसार के लोगों के कष्ट का क्या कहना है। भगवान उसको रोकना चाहते थे, तारों को पीने से रोकना चाहते थे, तो भगवान ने और एक रूप धारण किया और भगवान बने हैं मोहिनी भगवान की मोहिनी अवतार। असुरों का वीकनेस वो जानते, कमजोरी जानते हैं, कंचन और कामिनी, एक सोना और दूसरा और सोना, हिरण्यकश्यप साफ बेड तो फिर कामिनी कंचन बेड भी है, कंचन कंचन सुवर्ण का बिछाना है और इस पर सोना है और कामिनी है, एक ही कमजोरी है कामी और क्रोधी, काम ईश क्रोध ईश, ऐसे असुरी प्रवृत्ति के दानों के लिए भगवान ने एक उचित रूप धारण किया, भगवान मोहिनी बने, भगवान एक स्त्री का रूप धारण किए और मोहित किए उन असुरों को, और बड़े युक्ति पूर्वक उस कलश को असुरों के हाथों से अपने हाथ ले लिया है। दोनों के पंक्ति में बिठाया है, पंक्ति में बैठो, सबको मिलेगा, सबको मिलने वाला है अमृत घोषणा की। आज मोहिनी मूर्ति के सभी बातों को मान रहे हैं, बड़ा विश्वास, स्त्री में इतना बड़ा विश्वास, और भगवान ही जब स्वयं बने हैं मोहिनी मूर्ति बने हैं, प्रकट होते जैसे उनको नचाया जा रहा है, दानों को वो मान रहे हैं, जो भी आप जो भी कहो ऐसे हम करेंगे, नाराज नहीं करना चाहते स्त्री को, उनकी हर बात को मानते हैं। ऐसे जो प्रारंभ में भगवान ने प्रस्ताव रखा था, ये समुद्र मंथन इस घटना या इस लीला के पहले भगवान कहे थे देवताओं को, आप कभी कमजोर हो, दानों के साथ लड़ नहीं सकते, आपको शायद कुछ टॉनिक खाना पीना होगा, बलवान होंगे तो फिर आप टकरा सकते हो, लड़ सकते हो, ऐसा टॉनिक प्राप्त करना है तो मंथन होगा, मंथन का प्रस्ताव, समुद्र मंथन का प्रस्ताव भगवान का ही, लेकिन आप इतने कमजोर हो क्या स्वयं मंथन नहीं कर पाओगे, आपको सहायता की आवश्यकता है, किसकी सहायता ली जाए, तो दानव बड़े बलवान है, उनकी सहायता लो, उनकी सहायता से जब अमृत प्राप्त होगा तो फिर आगे का देखा जाएगा। तो भगवान ने भागवत में कहा है, भगवान ने एक न्याय का प्रस्ताव रखा, सर्प मूषक न्याय, सर्प और चूहा मूषक उनका न्याय, ये दो एक समय पिंजरे में पकड़े गए, एक पिंजरे में सर्प है उसी पिंजरे में चूहा भी है, तो सर्प ने कहा, देखो अगर मैं चाहूंगा तो तुमको अमृतकाल का समय हो ही चुका ही है, मैं खा सकता हूँ तुमको। तुम चाहते हो मैं खाके दिखाऊं, फिर जब मैं खाऊंगा तो तुम होंगे नहीं दिखाने के लिए। लेकिन खाऊंगा नहीं तुमको, खाऊंगा नहीं, लेकिन एक सहायता करो। वो क्या है? तुम्हारे पास ऐसी शक्ति या युक्ति है, इस पिंजरे का तुम छेद कर सकते हो, होल बनाओ, उसमें से हम दोनों निकल जाएंगे। तो वेरी गुड आइडिया, मूषक तैयार हुआ, वाई नॉट, हम ऐसे करते हैं। तो मूषक ने, चूहे ने छेद बनाया, और छेद जब बन गया तो साहब ने क्या किया, तो चूहे को खा भी लिया और बाहर भी निकल आया। इसको सर्प मूषक न्याय शास्त्र में कहा है। तो भगवान ने प्रस्ताव रखा था, आप अमृत का, अमृत मंथन के लिए सहायता लो देवताओं की, और इस न्याय से आगे सर्प मूषक न्याय, अमृत का कोई पीने का अवसर प्राप्त होगा। और फिर वैसे ही भगवान मोहिनी भगवान की व्यवस्था से अमृत केवल देवताओं को, एक बीच में घुस गया, एक बीच में उपंक्ति में बैठ गया, कम था वो। इतने भगवान ने क्या किया, पी लिया था, गले से नीचे उतर रहा था अमृत में, उसको कला काट। तो देवताओं को परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय, भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। ऐसी भगवान की योजना और रचना से अमृत प्राप्त हुआ, जो केवल देवता ही पिए। परित्राणाय साधुना, साधु देवता, उनकी रक्षा हुई, और वे जब बलवान हुए तो उन्होंने युद्ध में दानवों को परास्त किया है। तो ऐसा एक महान घटनाक्रम इस कुंभ मेले के साथ जुड़ा हुआ है। और उस समय निकला वो अमृत, हम शायद पछताओं, हमको कब मिलेगा, हम हमारा क्या होगा, अच्छा होता हम उस वक्त होते तो, लेकिन हम थे नहीं बात, लेकिन अब हम है। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, हर 12 वर्षों के उपरांत, और 2 स्थान ऐसे भी है, हरिद्वार और प्रयाग में, हर 6 वर्ष अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। वही अमृत प्रकट होता है, यह हरिद्वार में, वह प्रयाग में, और असंख्य लोग एकत्रित होते हैं उस अमृत पान के लिए, जैसे आप एकत्रित हुए हो। लेकिन साथ साथ ये नहीं भूलना कि भगवान का कथामृत, भगवान का उपदेशामृत, भगवान का हरिनामामृत का पान अनिवार्य है। प्रेमानंदे हरि 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 वो श्री प्रभुपाद स्वयं भी कुंभ मेलों में उपस्थित रहा करते थे। 71 और 77 में प्रभुपाद स्वयं मेले में थे, और उस समय प्रभुपाद कहे कुंभ मेला साधु संघ का पर्व है। सुनिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कुंभ मेला साधु संघ का पर्व है। यदि आप कुंभ मेले में भगवत भक्ति के विज्ञान को समझने वाले व्यक्ति की खोज में जाते हो तो आपका मेला सार्थक है। तो श्रील प्रभुपाद हमको प्रेरित किया करते थे कुंभ मेले में आने के लिए, जाने के लिए, उत्सव पंडाल की व्यवस्था करने के लिए, ताकि भगवत भक्ति का जो विज्ञान है वो औरों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लोग ये हरे कृष्ण लोग, इस्कॉन के लोग, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उस भगवत तत्व विज्ञान को प्रस्तुत करने पहुंच जाते हैं। हमारे लिए ये मुख्य बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये अमृत अधिक महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार। और दूसरा अमृत हमारे लिए गौण है। दूसरे अमृत से मुक्ति तो इस हरि नामामृत से भक्ति की प्राप्ति है। आप टेक अप टेक, आप क्या पसंद करोगे, मुक्त होना चाहोगे कि भक्त होना चाहोगे? कृष्ण भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् भगवद गीता की, इसका वितरण भी करो, भगवद गीता संतों का और हरि नाम का और प्रसाद अमृत का। ओके मंदे हरि 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 बोल।
लोकनाथ महाराज ने